लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहित आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्म कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन मधुवन के संचालक श्री निधि जी के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कई ऐसी चीजों और व्यक्तियों को पाते हैं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। वे हमें प्रेरणाएं देते हैं और हम उन प्रेरणाओं को आत्मसात कर जीवन में सुकून का अनुभव करते हैं। यदि विभिन्न धर्मात्माओं के जीवन पर गौर किया जाए तो हम पाएंगे कि वे बहुतों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर की उपस्थिति झलकती है। वे ईश्वर के वचनों के अनुसार जीते और दूसरों को भी जीना सिखलाते हैं। संत पापा फ्रांसिस न केवल ख्रिस्त समुदाय के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते और सभी लोगों के बीच भाईचारा, प्रेम एवं शांति फैलाना चाहते हैं। आज हम ब्रह्म कुमारीज के सामुदायिक रेडियो मधुवन के संचालक श्री निधि जी से सुनेंगे कि वे पोप फ्रांसिस से किस तरह प्रेरणा पाते हैं, और वे हमें बतला रहे हैं कि ऐसे महान लोगों से प्रेरणा ग्रहण करना हमारे जीवन के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्री निधि जी के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्री जी, आपका बहुत स्वागत है वैटिकन रेडियो में, और हमारे श्रोताओं के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपना छोटा परिचय बताएंगे।
थैंक यू सो मच। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज रेडियो वैटिकन में आपके साथ हूँ, और हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भारत से हूँ और भारत में हम ब्रह्मा कुमारीज का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाते हैं जिसका नाम है रेडियो मधुबन। 90.4 FM उसकी फ्रीक्वेंसी है, और लोग उसे इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं, ऐप पर, और रेडियो पर तो सुनते ही हैं FM पर। और पिछले 10 साल से भी अधिक समय से हम रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम करते हैं, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचाने के लिए एक बहुत ही सुंदर जरिया है। कोई भी सकारात्मक चीज है, कोई अच्छी चीज है, अगर आप रेडियो पर लोगों को देते हैं तो वो ताकत, वो एनर्जी लोगों तक पहुंचती है, और उससे लोगों के अंदर एक मोटिवेशन भी पैदा होता है। उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं कि हम न चाहते हुए, न जानते हुए भी किसी और के लिए सहारा बन जाते हैं, किसी और के लिए सहयोग का, हेल्प का एक जरिया बन जाते हैं, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं समझता हूँ रेडियो वैटिकन में भी ऐसी बहुत सारी सुंदर प्रेरणाएं लोगों तक जाती होंगी। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ हम देख रहे हैं, और मुबारकबाद इस बात के लिए भी है कि एक बहुत अच्छा काम है। हम सभी पोप को एक बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं, सिर्फ एक धर्मगुरु होने के नाते नहीं, सिर्फ ईसाइयों के गुरु होने के बात नहीं है, मगर पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं पोप। और यहाँ आकर जब हम रेडियो वैटिकन में देखते हैं कि उनकी प्रेरणाओं को, उनकी आवाज को पूरी दुनिया तक और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग भाषाओं में कार्यक्रम करना, ये काबिले तारीफ बात है। और जैसे कहा जाता है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान आपको वो ताकत भी देता है, और आपसे वो चीजें करवा भी लेता है। और यहाँ हम रेडियो वाटिकन में चीज देख रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में भी रेडियो वाटिकन चलता है, हिंदी में, तमिल में, मलयालम में, यूरोपीय भाषाओं में भी इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, 40 से अधिक भाषाओं में आप लोग कार्यक्रम करते हैं। अपने आप में एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है कि देखिए अच्छाई का काम भी कितने बड़े लेवल पे हो सकता है, और सब लोग जब मिलजुल कर काम करते हैं और एक निस्वार्थ भाव से ये काम करते हुए जब देखने को मिलता है तो ये बातें दिल को छू जाती हैं, और यही चीज निकलती है कि भाई ऐसा और काम आगे बढ़े और लोगों तक ये संदेश पहुंचे, ये शुभ संदेश हो, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें।
जरूर, आप यहाँ पुण्य शहर आए हैं रोम, जहाँ हमारे परम धर्म गुरु पोप रहते हैं फ्रांसिस, तो उनके बारे आप क्या सुने हैं, आप उनकी कौन सी बात पसंद करते हैं?
वैसे तो पोप फ्रांसिस को बहुत बार टीवी पर देखने का मौका मिलता है, खासतौर पर जब भी कोई ईसाई फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ईस्टर का संदेश होता है या फिर जो ईसा मसीह का जन्मदिन है, बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं, क्रिसमस के टाइम के संदेशों को भी हम टीवी पर जरूर सुनते हैं, और हम रेडियो पर क्योंकि काम करते भी हैं तो उनके संदेशों को अक्सर थोड़ा सुनकर उसे हिंदी भाषा में अनुवाद करके बताना, लोगों तक वो बात पहुंचाने का काम भी हम करते रहे हैं। और पोप फ्रांसिस जेवियर का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि उनको जब भी देखते हैं उनके अंदर एक बहुत ही आत्मीयता का भाव जागृत होता है। हालांकि कभी उनसे हमने पर्सनल मुलाकात नहीं की है, जैसे वन ऑन वन कभी मिले नहीं हैं, मगर उनके प्रेजेंस को भी जब फील करते हैं, उनकी बातों को जब सुनते भी हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे हैं। कभी ये नहीं लगता कि नहीं, ये तो रोम में बैठे हैं, हम कहाँ भारत में बैठे हैं, वो नहीं लगता। एक बहुत ही प्रिय संवाद हमें महसूस होता है, कि ऐसा लगता है कि अपनापन महसूस हो रहा है, ये हमसे बात कर रहे हैं, ये महसूस होता है। और मैं समझता हूँ ये उनके अंदर की जो एक गजब की सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, कि वो हर एक को अपना बना लेते हैं, या बिना प्रयास किए के भी एक सहजता से, एक सरलता के भाव से वो ये जो भाव दूसरे व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न कर पाते हैं, मैं समझता हूँ ये ईश्वर की असीम कृपा ही है जो उनके जरिए हम लोगों तक मिलती है। और वो ईश्वर के इतने खूबसूरत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके जरिए ऊपर वाला अपने काम को अंजाम देता है, तो वो चीज महसूस होती है। और मैं अपने लिए ये चीज कहता हूं कि मैं जब से वो पोप बने हैं, उनके जीवन में जो सादगी है, जो लोगों से मिलने का उनका जरिया है, और जब भी कभी मीडिया में हम कोई चीज पढ़ते, सुनते, देखते आते हैं, तो वो चीज बहुत ही दिल को सुकून महसूस कराती है कि वाह, क्या क्या हस्ती है, क्या ऐसी खूबसूरती है जो उम्र के उस बाउंड्री के बाहर भी हम सबको प्रेरणाएं देती हैं, और वो बिल्कुल गजब की बात।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो मधुबन के संचालक श्रीनिधि जी के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका एक और सुबह। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शराब की लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। शराब की लत एक गंभीर बीमारी है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक शारीरिक, मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, समाज में मान सम्मान घट जाता है और लोग कटने लग जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाता, यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। श्रोताओ, ऐसी अवस्था में शराबी इस लत पर काबू पाने का दृढ़ निश्चय करने से भी अकेला इस बीमारी से लड़ नहीं सकता। इस लत को छुड़वाने का काम घर से शुरू होता है। उसे अपने परिवार, अपने मित्रों के सहारे की जरूरत होती है, जो उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकें, उन्हें सहारा दे सकें। आशा है आज की नाटिका इस बीमारी से फंसे लोगों का मनोबल बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका एक और सुबह।
सुनो, कल रश्मि की स्कूल की फीस भरना है। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे और तुम हो कि अनसुनी कर रहे हो।
सुन लिया मैंने, कोई बहरा नहीं हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास हो तो तू भर दे इसकी फीस।
हाँ हाँ, तुम्हारे पास क्यों होंगे इसकी फीस के पैसे? तुम्हारे पास तो सिर्फ अपनी शराब पीने के लिए पैसे होते हैं, सिर्फ शराब के लिए।
तो क्या शराब में अपने पैसे की पीता हूँ, अपनी कमाई की? तेरी कमाई की नहीं पीता, तू अपनी कमाई अपने पास रख।
आखिर शराब से फायदा क्या है तुम्हें? तुम्हें पता है शराब में अगर किसी कीड़े को डालो तो वो भी मर जाता है।
देखा तूने, पेट के लिए कितनी अच्छी है शराब, तभी तो मैं पेट के कीड़े मारने के लिए शराब पीता हूँ।
तुम्हें पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घर तबाह कर दिए हैं।
और तुझे पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घरों को बना भी दिया है। बड़े बड़े व्यापारों की डीलिंग पार्टियों में शराब के साथ ही होती है।
तुम उनकी बात छोड़ो, आदमी के पास पैसा आते ही तमाम बुराइयां भी पैसे के साथ साथ चली आती हैं। और जब शराब जैसी बुराई हावी होती है तो फिर पैसा कहाँ गया उसका पता भी नहीं चलता।
मम्मी ठीक कहती है पापा।
तू चुप रह, ज्यादा समझदार न बन।
क्यों, कि तुम्हारी समझदारी पर अतिक्रमण कर रही है क्या? आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि शराब सेहत और घर दोनों के लिए अच्छी नहीं है?
जब तू शराब पीती ही नहीं है तो तुझे क्या पता कि शराब सेहत और घर के लिए अच्छी होती है या नहीं? अरे शराब पीने से जहाँ सेहत बढ़ती है वहीं घर में प्यार भी बढ़ता है, समझी तू? पीने से आदमी अपने में रहता है और असीम शांति और मस्ती का एहसास रहता है।
अच्छा, तो क्या शराब इतनी अच्छी चीज है?
तो फिर तुझे क्या पता, तभी तो मैं पीता हूँ।
अच्छा, तब तो फिर शराब मुझे भी चखनी पड़ेगी कि क्या वाकई में शराब इतनी अच्छी है।
अरे छोड़, क्यों मजाक करती है? शराब और अब चखना तेरे बस की बात नहीं, इसे तो मर्द ही पी सकते हैं, मर्द। अब जाने दे मुझे, मेरा टाइम हो गया।
बस चले फिर शराब का गुणगान कर शराब पीने। आज दो दिन हो गए इन्हें ऑफिस से छुट्टी लिए, अब बैठेंगे जाकर अपने शराबी दोस्तों के बीच। ठीक है, तुम कहते हो ना कि शराब चखना मेरे बस की बात नहीं, तो अब मैं भी इन्हें शराब चखकर ही बताऊंगी।
तो क्या मम्मी तुम भी शराब पियोगी?
बस अब तू देखती जा बेटी कि मैं क्या करती हूँ।
रश्मि, क्या हुआ है तेरी माँ को, ये इस तरह झूम क्यों हो रही है, इसकी तो आंखें भी बंद है।
कुछ नहीं पापा, शायद मम्मी की तबीयत खराब है।
तबीयत खराब है, जरा मुझे भी तो देखने दे। हैं, शराब की बदबू। रश्मि, तेरी माँ की हिम्मत कैसे हुई शराब पीने की? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों?
हम लोग वो सिरे वाले महेश अंकल के यहाँ से आ रहे हैं। पापा आप भी तो शराब पीते हैं, आप तो रोज शराब पीते हैं। अगर आज मम्मी ने शराब पी ली तो क्या हुआ? आप ही तो कहते हैं कि शराब बहुत अच्छी चीज है, तो आज मम्मी ने पी ली।
चुप रहे नादान लड़की।
मैं अब सब समझने लगी हूँ पापा, ना समझ नहीं रही मैं, 12वीं में पढ़ती हूँ।
मगर इसे तो देख किस तरह से नशे में धुतती है तेरी माँ। फिर इसे शराब मिली कहाँ से?
वो सिरे पे रहने वाले आपके दोस्त है ना महेश अंकल।
हाँ?
मम्मी और मैं उनकी बीबी यानी कि आंटी से मिलने गए थे, वहीं मम्मी ने फ्रिज में महेश अंकल की शराब की बोतल देखी और आंटी से मांग कर कुछ शराब पी ली, आंटी ने भी पिया।
अरे महेश की औरत पिए तो पिए, इसे क्या जरूरत है शराब पीने की? हालत देख ले इसकी, बेहोश है ये, बेहोश।
तो क्या पापा, जब आप भी पीकर आते हैं तब आप भी तो ऐसे ही बेहोश रहते हैं।
मगर ये तो अब मेरे लिए मुसीबत बन गई।
आप भी तो पीने के बाद मम्मी के लिए मुसीबत बन जाते हैं। आज मम्मी आपके लिए मुसीबत बन गई तो क्या?
मैंने भी कहा इसे शराब चखने की बात कह दिया, अब क्या करूं?
कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी भी कुछ नहीं करती और आप दूसरे दिन होश में आते हैं। कल सुबह मम्मी भी होश में आ जाएगी।
तेरी माँ ने तो कमाल कर दिया, आज पैसे ना होने के कारण मैं सूखा रहा तो ये पीकर गीली होगी। सुबह हो गई तेरी?
आज क्या? मेरी तो रोज ही सुबह होती है।
खैर मना ले अपनी, आज तेरी जिंदगी की नई सुबह हुई है। कल तो उस महेश के बच्चे की औरत के यहाँ से खूब शराब पीकर आई थी, इतनी कि पूछो मत। कल शाम से ही बेहोश थी तू, अब जाके होश आया है तेरे को?
मुझे तो अब जाकर होश आ भी गया, तुम्हें तो ना जाने कब होश आएगा, और भगवान जाने आएगा भी या नहीं। तुम्हारी जिंदगी तो शराब और शराब और शराब बनकर ही रह गई है।
ये तू क्या कह रही है सरिता?
ठीक कह रही हूँ मैं, शराब के सिवा और तुम्हारे जीवन में किसी और की जगह ही क्या है, ना मेरी ना अपनी बेटी रश्मि की।
ऐसा मत बोल सरिता, तुझे पता है मैं कल से कितना परेशान हूँ। तूने शराब क्यों पी? क्या जरूरत थी तुझे शराब पीने की? इतनी शराब पीने से अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा और इस रश्मि बेटी का क्या होता, इतना तो सोचा होता।
और तुम जो रोज शराब पीकर आते हो, तुमने कभी ये सोचा कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा और रश्मि का क्या होगा? मेरा एक दिन शराब पीकर आना तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया, और तुम जो रोज मेरे लिए मुसीबत बनकर आते हो वो।
मेरी बात छोड़ सरिता, मैं तो हूँ ही बुरा, मगर आज तुम मुझसे एक वादा कर सरिता कि आज के बाद तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगी। शराब अच्छी चीज नहीं है सरिता।
मगर तुम तो कहते थे कि शराब अच्छी चीज होती है।
मैं गलत था सरिता, सचमुच में शराब अच्छी चीज नहीं होती, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है सरिता।
नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे पेट के कीड़े मारती है, तुम्हारे टेंशन दूर करती है, तुम्हें एक अजीब शांति और मस्ती का एहसास कराती है ना?
नहीं सरिता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब पीने वालों की मनोस्थिति होती है। पीने के बाद आदमी गुस्सा भी तो करता है, नाली में गिरता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। नहीं सरिता, शराब में कोई अच्छा ही नहीं है। शराब को अच्छा कहना तो पीने का सिर्फ एक बहाना है, बहाना।
तो फिर वादा करो कि आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगे।
मैं वादा करता हूँ सरिता कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियूंगा।
वाह पापा, ये हुई ना कोई बात।
मगर सरिता तुझे भी एक वादा करना होगा कि तू अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी।
अरे पापा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल क्या मम्मी ने सचमुच शराब पी थी? अरे पापा, मम्मी ने तो प्लान बनाकर महेश आंटी से शराब मांगकर अपने ऊपर छिड़क ली थी, और आपके सामने पूरे समय शराबी की एक्टिंग करती रही ताकि आप शराब छोड़ने का वादा कर सकें, और मम्मी का प्लान कामयाब भी हो गया।
तो क्या सरिता सचमुच तुमने शराब नहीं पी थी?
नहीं, रश्मि ठीक कह रही है, और मुझे खुशी है कि आज तुमने शराब छोड़ने का वादा किया है। सचमुच आज मेरे जीवन में एक और सुबह आई है, जीवन का नया अर्थ लिए।
एक और सुबह, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, मेरी एक्का और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।